हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या 37, 38 एंड 39। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे यदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्षवर्त्मने। नमो नमस्ते स्त्वरिषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होण द्रपुलिंद पुलकशा आवीर शुंभा यवना सादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलस्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भि य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि। भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन द्वारा उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे तो सुखदेव गोस्वामी वही वार्ता को बता रहे हैं जो कि ब्रह्मा जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने बताए थे। और आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय में श्री भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है यदि तुम अपने मन को एकाग्र करोगे और इस निर्णय का पालन करोगे तो हे ब्रह्मा आपको कभी भी कोई गर्व विचलित नहीं करेगा, आपको कभी भी आप विचलित नहीं होंगे, उद्विग्न नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप सदैव मेरा स्मरण करोगे तो मेरी कृपा से आपकी संपूर्ण जो कष्ट है जो दुविधाएं हैं उनको मैं हरण कर लूंगा और आपको आनंदित करके आप मेरी कृपा से सारे अपने जो भी सेवाएं हैं जैसे सृष्टि की रचना और पुनः सृष्टि करना प्रलय तो ये सब में आप विचलित नहीं होंगे। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति कर्हि चेत्। एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति कर्हि चेत्। एतन्मतं समातिष्ट, एतन् मतलब यह, मतम मतलब निष्कर्ष या निर्णय जो मैंने आपको अभी बताया उसके अनुसार। परमेण अर्थात परम, समाधिष्ट मतलब समाधि द्वारा ध्यान के एकाग्रकरण से। भावान मतलब आप, कल्प यानी बीच की प्रलय और विकल्पेशु यानी अंतिम प्रलय, कल्प हो या विकल्प हो, न मुह्यति, न मना नहीं और मुह्यति मतलब मोहित नहीं होगे, कर ही चित कभी भी या कुछ भी। अनुवाद, हे ब्रह्मा तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें ना तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में अहम सर्वस्य प्रभो इत्यादि में दिया है, उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के सार को 4 श्लोकों में अहम एवासम एवाग्रे इत्यादि में रख दिया गया है। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है और वे ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के मूल वक्ता थे। अनेक वैयाकरणों तथा झगड़ालू अभक्तों ने श्रीमद् भागवतम के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है कि उनके द्वारा बनाए गए सुस्थिर निर्णय यानी निष्कर्ष से विचलित न हो। श्रीमद् भागवतम के सार रूप इन्हीं चार श्लोकों के शिक्षक भगवान थे और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता थे। शब्दाडंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्त के इस गुह्य रहस्य तक पैठ नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा शुष्क चिंतन से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करते हैं। अतः भगवान ब्रह्मा जी को आग्रह करते हैं और ब्रह्मा के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी कि मनुष्य को तथा कथित वैयाकरणों से के निर्णय से या अन्य अल्पज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर करना चाहिए। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के अनुसार उसी के आधार पर पहला सोपान है परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है। किसी को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समस्त प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं फंसाता। वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांत की शिक्षा देता है। मनुष्य सगुण भक्त के बिना निर्विशेषवादियों तथा शुष्क चिंतनों की तरह चिंतन करता रहता है और जन्म जन्मांतर तक भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। प्रामाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्राकृत्य संसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति के रूप में होता है। संसारी विवादकों को मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्यमय लगता है। इंद्रिय जगत से विरक्त होना आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जो पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है। ब्रह्मभूत अवस्था परमात्मा अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है और सांसारिक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह पूर्ण तुष्टि है कि अवस्था उपयुक्त स्थित है। श्रीमद् भागवतम 1.2.20 में इसका समर्थन ऐसा करता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस आत्म राम स्थिति में जो भक्ति करने के फल स्वरूप सांसारिक इंद्रिय सुख भोग से पूर्ण विरक्त के द्वारा प्रकट होता है, मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। इंद्रिय जगत की इस पूर्ण तुष्टि तथा विरक्त अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों सहित समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या शुष्क चिंतन से नहीं। चूंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः भगवान ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य को प्रकट किया। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए जो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है सुलभ है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो भक्त प्रीति पूर्वक भगवान की दिव्य भक्ति में लगा रहता है, उन्हें भगवान अपनी अहित की कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे वे भगवान के धाम को लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सके। अतः केवल चिंतन के आधार पर श्रीमद् भागवतम के इन चार श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ लोक के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया। भक्त जन्य दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त ही ऐसा वैकुंठ साक्षात्कार करने में समर्थ है। गोपाल दापनी उपनिषद श्रुति में कहा गया है, गोपवेशो में पुरुषः परस्तात आविर्भूवः, यानी ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। 5.29 चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं, जहां वे ग्वाल के प्रवेश में सुरभि गावें पालते हैं और जहां हजारों लक्ष्मियां प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। अतः श्री कृष्ण को ही परमेश्वर के मूल रूप में कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस आदेश से भी यही स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो कृष्ण है, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है, वे तो बाद के रूप हैं। अतः श्रीमद् भागवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम, श्रीमद् भागवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भागवत गीता की तरह भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमद् भागवत भगवत विज्ञान है, जिसमें भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह बोध होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को समझने का अर्थ है कि भगवान को समझा जाए, भगवान के स्वरूप को समझा जाए। जैसा कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना, कि तुम अगर जो मैंने अभी तुमको बताया है, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। कौन से निर्णय का पालन करो? अभी इन चार श्लोकों में श्लोक नंबर 33, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहम् यदेतच्च यो वशिष्येतसो सुस्नहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही रहूंगा। रितेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा बासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्र जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से इसकी खोज करे। सॉरी, इससे पहले 35 है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह मान लो, यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। इसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक हूँ। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र तथा सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो यहाँ पर ये चार श्लोकों में श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि किसके विषय में बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही बताया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में इसी की पुष्टि करते हैं कि वो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि वो गोविंद है, वही आदि पुरुष है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने अंतिम पैरा में बताया, अतः श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से यह भी स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो कृष्ण है, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है। यानी पुरुष और नारायण अवतार भगवान नहीं है, वे तो बात के रूप है, क्योंकि भगवान फिर सृष्टि की रचना के लिए जो पहले पुरुष अवतार लेते हैं, फिर वर्णा अवतार लेते हैं। अतः श्रीमद् भागवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बोध। बस कृष्ण को जानना ही वास्तविक में समस्त ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है। वेदेषु सर्वे अहम् एव वेद्यो। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि श्रीमद् भागवत भगवत विज्ञान है, जिसमें भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह से बोध है। तो ये जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, इसका मेन पर्पज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में जान सकें, भगवान को समझ सकें। क्योंकि जब तक जीव भगवान के विषय में जानेगा नहीं, तो भगवान के प्रति उसका आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। ये तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें इतने सरल शब्दों में इतनी बड़ी बातें समझा देते हैं, वरना ये श्लोक खाली हम पढ़ते रहते पूरे जीवन में, समझ तक नहीं पाते कि ये विष्णु की बात हो रही है या कृष्ण की बात हो रही है या किस अवतार की बात हो रही है। तो ये हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा है श्री प्रभुपाद जी की। आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, श्री शुक उवाच संपदिष्यैवं अजनो जनानां परमेष्टितं पश्यतस्तस्य तद्रूपं आत्मनोऽन्यरुणाधरी। संपदिष्यैवं अजनो जनानां परमेष्टितं पश्यतस्तस्य तद्रूपं आत्मनोऽन्यरुणाधरी। संप्रदिश्यैवं अजनो जनानां परमेष्टितं पश्यतस्य तद्रूपं आत्मनोऽन्यरुणाधरी। संप्रदिश्यैवं अजनो, श्री शुक उवाच, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, संप्रदिश्य यानी ब्रह्मा जी को पूरी तरह से उपदेश दिया। संप्रदिश्य उपदेश देने के बाद एवं इस प्रकार, अजन अजन माना भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, जनानाम यानी जीव आत्माओं के, परमेश्वर परमेष्टितम यानी परम नेता ब्रह्मा को, पश्यत देखते हुए, तस्य उसका, तत्रूपम उस दिव्य रूप को, आत्मनो मतलब परमेश्वर का, नरुणत मतलब अंतर्ध्यान हो गए, हरि मतलब भगवान। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि जीव आत्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते देखे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष है, और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप यानी आत्मनो रूपम दिखाते हुए चार श्लोकों में श्रीमद् भागवतम के सार का उपदेश दे रहे थे। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों के में अजना अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीव आत्माएं पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि इस श्रुति मंत्र में पूछे। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि इस श्लोक में कैसे बताया गया है कि अजना अजना मतलब वो भगवान परम पुरुष हैं और उन्होंने भगवान ने ब्रह्मा को अपना स्वरूप दिखाया था ना, तभी तो यहाँ पर बताया हुआ है पश्यतस्तस्य तद्रूपम आत्मनो नरोदह हरि के पहले जब दिख रहा होगा तभी तो नरुणत हुआ होगा ना। नरुणत मतलब वो अंतर्ध्यान हो गए, पहले दिखे थे ना तो दिखे थे तो का मतलब भगवान का कोई स्वरूप होगा तभी दिखे होंगे और फिर उसके बाद ही वो अंतर्ध्यान हुए होंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के सार का उपदेश भगवान दे रहे हैं। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों के में अजन अर्थात लिखा हुआ ना, जैसे संप्रदाय शैव अजनो जनानाम पुरुषे परमेष्ठितम के वो जितने भी जीव हैं उनमें परम है अजन्मा है लेकिन उनका स्वरूप है। जैसे यहाँ पर बताया जाए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के सार का उपदेश दे रहे हैं। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजना अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीव आत्मा पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि इस श्रुति मंत्र में बताया नरुण दत्त हरि के हरि कैसे है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बता रहे हैं कि दिव्य जगत में भगवान का अस्तित्व है, भगवान का स्वरूप है, वहाँ पर निराकार के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है, जब भी चेतना यानी ज्ञान होती है चेतना होती है तो वो साकार रूप सामने आता है ना। जब जब सोचता है भगवान के विषय में जी तो कुछ न कुछ स्वरूप आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है, अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल जल वृक्ष पर्वत नदी मनुष्य पशु पक्षी इस गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहाँ की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। चाहे वहाँ पर हर एक वस्तु ऐसा नहीं है वहाँ पर एकदम शून्य पड़ा हुआ है, कुछ वृक्ष नहीं है, पहाड़ नहीं है, नदियाँ नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं, वहाँ पर सुंदरता है, वहाँ पर विविधता है, सब कुछ है वहाँ पर सब। यहाँ साफ साफ पता प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसीलिए दी थी कि वे के जीव आत्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित कर सकें। भक्ति योग की परम ज्ञानमयी शिक्षा प्रदान कर सकें। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवतम के इस संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसको व्यासदेव को दिया और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को शुकदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप में सीख सके। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के स्वरूप के विषय में बताया जाता है और ये जानकारी पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को इसीलिए दी क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, उसकी संतान होगी, तो जितने भी जीव हैं उनको ब्रह्मा जी की इस व्याख्या को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में भी तो हम यही सोचते ना भाई हमारे बड़े जैसे मानते हैं हम भी वैसे मानेंगे, तो बड़े में बड़ा अगर इस तथ्य को लेकर भी आगे जाया जाए तो जितने भी जीव हैं मनुष्य जीवों में सबसे जो प्रथम जीव है वो ब्रह्मा है और वो क्या कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण कि वो भगवान श्री कृष्ण ही है गोविंद ही है जो अनादि यानी जब कोई नहीं था तब भी थे वो समस्त जीवों के आदि हैं और उनका कोई आदि नहीं सर्व कारण कारण वो ही समस्त कारणों के कारण हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान ने किस प्रकार से संसार की सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। वे कहते हैं अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्वतः अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्वतः अंतर्हिते मतलब अंतर्हित या अंतर्ध्यान होने पर इंद्रिय अर्थाय मतलब समस्त इंद्रियों के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के लिए तो ये भगवान जो समस्त इंद्रियों के लक्ष्य हैं कौन हरये भगवान हरि या भगवान के लिए विहित अंजलि विहित मतलब हाथ जोड़कर अंजलि मतलब हाथ जोड़कर सर्वभूत माया विश्वम सर्वभूत मतलब समस्त जीव आत्माओं माया से पूर्ण विश्वम यानी ब्रह्मांड ससर्ज उत्पन्न किया इदम यह सह अपने उसने यानी ब्रह्मा जी ने पूर्ववत मतलब पहले की तरह जैसे पहले बना हुआ था ऐसा। अनुवाद भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीव आत्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह उसके पूर्व थी। तो यहाँ सबसे सुंदर बात जो बताई जा रही है वो क्या है अंतर्हित इंद्रियार्थाय हम हमेशा अपने जीवन में सोचते ना कि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें जीव की पूरा जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में के प्रयास में घूम रहा होता है पूरा जीवन। हम अपने जीवन को देखें ना तो हर वक्त यही होता है कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें लेकिन ये कमी नहीं सोची कि इंद्रियां बनी क्यों है उनका लक्ष्य या उनके बनाने का कारण क्या है। इंद्रियार्था यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है इंद्रियार्थाय यानी इंद्रिय का लक्ष्य क्या है वो क्या है हरये यानी भगवान। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीव आत्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपदान है यानी इंद्रियों का लक्ष्य भगवान है। बहिरंग शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीव आत्मा परमात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देती है। ऐसा ही तो होता है हम संसार में भी आते हैं तो अगर अपनी इंद्रियों से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो फिर हमारा जीना सफल हो जाए लेकिन हम क्यों करते काम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये बहिरंग शक्ति जो है उसके कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं और समझते हैं कि इंद्रियों को आनंद देने से संतुष्टि मिलेगी लेकिन ऐसी संतुष्टि ना पहले कभी किसी को मिली है और ना ही कभी मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हरि भक्ति सदोदय 13.2 में निम्नलिखित श्लोक आया है जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि इंद्रियों का वास्तविक लक्ष्य क्या है। उसमें लिखा है अक्षणो फलं तादृश दर्शनं हि तन्नो फलं तादृश गात्र संग जिह्वा फलं तादृश कीर्तनं हि सुदुर्लभा भागवता हि लोके। यहाँ बताया जा रहा है अक्षणो फलं तादृश दर्शनं हि, हे भगवत भक्त आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से तन्नो फलम तादृश गात्र संग, जो तन है हमारा देह वो तुम्हारे देह के स्पर्श से पूर्ति हो जाती है। जिह्वा फलम तादृश कीर्तनम ही, जिह्वा तुम्हारे गुणों का गुणगान करने के लिए है, सुदुर्लभा भागवता ही लोके, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। बस इन इंद्रियों से किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन हो जाए, शुद्ध वैष्णव की सारा करने का, उसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो भगवान भी कहते हैं सुदुर्लभा, है ना, स महात्मा सुदुर्लभा, सुदुर्लभा भागवता ही लोके। ये भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना अगर, तो क्या देंगे जानते हैं, हरी रीजे तो मुक्ति दे, है ना, वो मुक्ति दे देंगे आपको, लेकिन हरिजन हरी ही दे। इसलिए वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की कभी हमें सेवा का अवसर मिले। यहाँ साफ साफ बताए सुदुर्लभा भागवता ही लोके, भगवान का शुद्ध भक्त जो है वो आपको भगवान प्राप्त करा सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा एक बात की इच्छा होनी चाहिए कि हमें किसी तरह से वैष्णवों की सेवा करने का अवसर मिले। वैष्णव सेवा जो है महत सेवम, वो है वो हमें भगवान प्राप्त करा देगी। बस कभी किसी वैष्णव की स्मृति में हम आ जाए, कोई वैष्णव जो है उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कोई शुद्ध भक्त प्रसन्न हो जाए, बस समझो। फिर हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना वो भगवान से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते और भगवान सदैव सोचते हैं कि मैं उसके लिए क्या करूं। और अगर वो किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं कि आपको भगवान प्राप्त हो या आपको जीवन लक्ष्य प्राप्त हो, आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, तो भगवान अपनी भक्ति उसे प्रदान करते हैं। भगवान जानते हैं कि यदि वो भक्ति करेगा तो मुझे अपने आप को उसे देना पड़ेगा, लेकिन वो योग्यता ना होते हुए भी यदि किसी को शुद्ध वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें जीवन में सदैव भक्तों का आदर करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, उसी से हमें अपने जीवन के वास्तव, क्योंकि हमारे अंदर इतनी तो क्वालिटी नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा तो अवश्य उनके आशीर्वाद से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि हे भगवत भक्त आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श से स्पर्श की पूर्ति हो जाती है, जिह्वा तुम्हारे गुरुओं के गान के लिए है, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अत्यंत दुर्लभ है। प्रारंभ में जीव आत्माओं को इंद्रियां इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी कि वे उनसे भगवान अथवा उनके भक्तों की प्रीति पूर्वक सेवा करें, किंतु बद्ध जीव बहिरंग शक्ति के मोह में आकर इंद्रिय सुख से सम्मोहित हो गए। अतएव ईश्वर चेतना की सारी प्रक्रिया इंद्रियों के बद्ध कार्यों को सही मार्ग पर लाना और फिर से उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं शुरू में इंद्रियां मिली थी, भगवान ने दी थी, क्यों दी थी, ताकि हम भगवान को और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। लेकिन संसार में आते ही क्या हुआ, बद्ध जीव जो है वो बहिरंग शक्ति के कारण मोहग्रस्त हो गया और इंद्रिय सुख के लिए अपनी इंद्रियों को यूज करने लगा। अतएव ईश्वर चेतना की सारी क्रिया इंद्रिय के बद्ध कार्यों को सही मार्ग लगाना है। अब हम जो भी सत्संग सुनते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका कार्य क्या है? मेन कि हमारी इंद्रियों को पुनः भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए बद्ध जीवों की फिर से सृष्टि करके अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रत्येक सेवा में लगाया। इस प्रकार यह ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसकी सृष्टि बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके और ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी तथा उनकी मंडली इसी उद्देश्य से भगवान के कार्य में लग जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मांड की बार बार सृष्टि इसीलिए होती है क्योंकि बद्ध जीव को बार बार भगवान अवसर देते हैं कि वो मेरी सेवा करके मुझे प्राप्त कर ले। और ये सारी जो मंडली है, जितने भी ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी, वो सब इसी के लिए, भगवान की इसी सेवा के लिए कार्य करते हैं। यह कार्य है इंद्रिय तुष्टि के दायरे से बद्ध जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापिस ले आना। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, उनका काम यही है कि बद्ध जीव को उसके वास्तविक उद्देश्य के विषय में बताएं और ताकि वो भगवान की सेवा में सामान्य स्थिति में, जो उसकी रियल स्थिति है, उसमें पहुंच सके। किंतु निर्विशेषवादी ऐसा करने की बजाय बद्ध जीवों को और भगवान को भी चेतना विहीन बनाने लगे रहते हैं। बद्ध जीवों के साथ यह दुर्व्यवहार है। इंद्रियों की रुग्ण अवस्था दोष के उपचार द्वारा ठीक की जा सकती है, ना कि इंद्रियों के उच्छेदन से। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी इंद्रियों की रुग्ण अवस्था है। क्या अवस्था है? कि इंद्रियां अपनी संतुष्टि चाहती हैं, तो उनका उपचार कैसे होगा? यदि वो अपने भगवान की सेवा करेंगी। लेकिन यदि उसको उच्छेदन बताया जाए कि है ही नहीं इंद्रियों, इंद्रियां भगवान की है ही नहीं, तो भला वो कैसे अपने इस रोग को समाप्त करेंगी? यदि आंखों में कोई रोग हो जाए तो ठीक से दिखने के लिए उनका उपचार करना चाहिए। आंखों को निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं है। उसी प्रकार सारा भवरोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और रुग्ण अवस्था से मुक्ति का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निहारने, उनकी महिमा सुनाने, उनके लिए कर्म करने की ओर लगाया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर से ब्रह्मांड के कार्य की सृष्टि की। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने अंतिम निर्णय ले दिया है कि इंद्रियां रहित न भगवान है और न ही हम हैं, और इंद्रियों की संतुष्टि ही जीव अपने आप का इस संसार में मकसद समझता है। लेकिन इंद्रियों की संतुष्टि कैसे है? अंतर हितेंद्रियार्थाय, कि हम इंद्रियों को उनका वास्तविक जो कार्य है वो करने के लिए देंगे। इंद्रियों को यदि इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो आनंद नहीं, उल्टा वो हमारे पतन का कारण बनेंगे। इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही हमें बार बार यह शरीर को त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये हम काम नहीं कर पाते। और आज हमें पुनः मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।